श्री भीमसेन आचार्य रचित धवला टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री दर्शन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है। जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है, ये 16वीं पुस्तक जो शेष अनुयोग द्वार, उसमें से संक्रमण अनुयोग द्वार की अपनी चर्चा चल रही है। हम पृष्ठ संख्या 348 पर आ गए, 348। यहाँ संक्रमण की बात देखते हुए, हाँ कुछ लाया क्या? हाँ, तीर्थंकर प्रकृति। तीर्थंकर, हाँ तीर्थंकर प्रकृति का बंद, तो बंद अंतक कोड़ा कोड़ी सागर और आबाधा अंतर्मूर्त। हाँ, संक्रमण कौन सी प्रकृतियों में होता है? अच्छा, उसके साथ बंधने वाली जो कोई शुभ प्रकृति, हाँ यानी वो अपने रूप से तो उदय में नहीं आ सकते जब तक 13वां गुण स्थान है, तो संक्रमण होकर उसके परमाणु फिरते रहते। हाँ, उसमें अंतर एक समय बताया था। संक्रमण में अंतर देखा था ना हमने, किस में अंतर देखा? संक्रमण में देखा था, किस में स्थान, प्रकृति संक्रमण में देखा था, है ना? जरा देखते हैं अंतर कहाँ लिया था हमने। तीर्थंकर नाम कर्म का संक्रमण का काल देखा था, जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से साधिक 33 अग्रोपम। हाँ, तो संक्रमण का काल, अंतर कहाँ देखा? अंतर में बात आई नहीं उसकी ना। तीर्थंकर प्रकृति का अंतर काल साता वेदने के समान है, और साता वेदने का क्या है? एक समय उत्कर्ष से अंतर्मूर्त मात्र। बंद, हाँ नहीं, बंद का अंतर नहीं है, संक्रमण का अंतर। बंद का अंतर तो इस तरह से लेके 90 में गया और फिर मैं एक समय में मर गया, तो वो तो बंद का अंतर कह सकते हैं हम। फिर चौथे में गया जाएंगे तो बंद चालू हो जाए, एक समय कैसा घटित होगा? यानी आठवें में से, आठवें में बंद था, नवे में गया और एक समय में मरा, तो उस समय संक्रमण नहीं था, ऐसा ले सकते? पता नहीं, यानी बंद की अपेक्षा होगी तो। हाँ उत्कर्षण की अपेक्षा भी हम उसको कहेंगे ना क्या? नहीं नहीं उत्कर्षण की यहाँ नहीं आती अपेक्षा, प्रकृति में नहीं आती ना, अन्य प्रकृति रूप हो जाते उतने ही लेते हैं ना उसमें। ठीक है अभी हम आते हैं 348। अब उपरिम नीचे की लाइन सबसे अंतिम, उपरिम स्थितियों के उत्कर्षण का विधान कहते हैं। उपरी मैंने ऊपर के, कहाँ के ऊपर के? नहीं सत्ता में जो पड़े हैं उसमें सबसे टॉप वाला जो निषेक है उसमें से उत्कर्षण होकर कहाँ जाएंगे? तो नए बंधने में ले जाएंगे। हाँ देखो इसको जरा ऊपर का पैराग्राफ फिर कहते हैं, देखते हैं। ये अपना स्थिति संक्रमण का विषय चल रहा है, उसमें मूल प्रकृति के स्थिति का संक्रमण और उत्तर प्रकृति के स्थिति का संक्रमण से दो बात है। तो ये स्थिति का संक्रम किस विधि से होता है? तो अपकर्षण के द्वारा होता है या उत्कर्षण के द्वारा होता है? अब ये अपकर्षण की तो बात हमने कल देखी थी, अति स्थापना वर्ग उसकी बात होगी। अब उत्कर्षण कैसे होता है ये 348 पर जो हमने कल पढ़ा था उसको दोबारा पढ़ते हैं, नया पैराग्राफ जो बीच में है उसको पढ़ते हैं। उत्कर्षण कैसे होता है इसका उत्तर देते हैं। यथा उदयावली के भीतर की स्थिति यानी निषेक उत्कर्षण को प्राप्त नहीं कराई जा सकती। जो उदयावली में प्रविष्ट हो गया है निषेक, जो अभी उसका उत्कर्षण होकर वो उदयावली के ऊपर नहीं जा सकते, यानी अभी वो उदय आकर ही छुटको ऐसा कहते ना, उदय क्रम से उदय में आएंगे क्योंकि ऐसा स्वभाव है। तो उदयावली के ऊपर का जो निषेक है उसका उत्कर्षण हो सकता है। उत्कर्षण के लिए एक रूल हमने कौन सी देखी थी, कौन सी आवश्यक बात है? नया, उसी समय नया बंद होना चाहिए। हाँ, नहीं अधिक स्थिति का नहीं भी होवे, आवली के ऊपर का जो एक निषेक है ना, हमने 16 समय की आवली मानी है और 17वां नंबर का उत्कर्षण होना है, तो नई स्थिति कम भी बांधी तो भी वहां उसका आबादा उसके उससे भी बड़ा है ना, आवली से बड़ा है आबादा। यानी कम स्थिति वाले में भी वो नीचे नीचे वाले निषेकों का तो उत्कर्षण हो ही सकता है। अभी हम उसको देखेंगे वो 17 वाला निषेक उत्कर्षण होकर कहां चला जाएगा। तो जो नया कर्म बंधा है उसके आबादा के ऊपर के निषेक से चालू होकर ऊपर सर्वत्र चला जाएगा, क्योंकि आबादा के नीचे तो निषेक ही नहीं है। तो यहां कहते हैं एक समय अधिक उदयावली आदि रूप स्थिति का उत्कर्षण किया जा सकता है। उत्कर्षण कहां कहां से हो सकता है? उदयावली का नहीं हो सकता, उदयावली के ऊपर के निषेक से प्रारंभ होकर ऊपर के निषेकों का उत्कर्षण हो सकता है। उस उत्कर्षण को प्राप्त कराई जाने वाली स्थिति का भी निक्षेप अबध्यमान स्थितियों में नहीं किया जा सकता। अबध्यमान जो नहीं बंधी जा रही है उन स्थितियों में, उन निषेकों में उनका निक्षेप नहीं होता। यानी उसकी दूसरी भाषा में अब जो नए बंधने वाले हैं उन निषेकों में उनका निक्षेप होगा। मिला भाई आपको? 348 पेज पर है। किंतु बध्यमान स्थितियों में, बध्यमान स्थितियों ने अभी जो नया बंध हुआ है, नए जो निषेक रचना हुई है, उन स्थितियों में जघन्य स्थिति को आदि करके, यानी अभी जो नई बंधी है ना उस नए बंधे वाले पहले निषेक से लेकर, जघन्य स्थितियों ने पहला निषेक, देखो ये सप्ताह में इतने निषेक पड़े हैं और अभी ये नया बंध हुआ है, वो बंध छोटा है कि बड़ा है वो अभी अपने को अभी कंसर्न नहीं है, वो तो बाद ऊपर के निषेकों के लिए उसका कंसर्न होगा। अब यहाँ पर ये उदय का समय है, अभी हम यहाँ चार निषेक मान लेते हैं या तीन मानते हैं उदयावली के लिए, तो इसका तो उत्कर्षण नहीं होगा। तो उत्कर्षण किसका होगा? आवली के ऊपर के निषेक का होगा, और उत्कर्षण होकर निक्षेप, यानी वो कहाँ कहाँ परमाणु दिए जाएंगे, तो नए बनने वाले पहले निषेक से लेकर ऊपर सर्वत्र दिए जाएंगे। ये दूसरे का वो भी यहां से लेकर ऊपर सर्वत्र दिए जाएंगे, तीसरे का वो भी यहां से लेकर सर्वत्र दिए जाएंगे। परंतु ये जो ये बीच में जो अति स्थापना है वहां तो कोई निषेक ही नहीं है। तो यहां कहते हैं यह विधान उत्कर्षण को प्राप्त कराई जाने वाली अधस्तन स्थितियों के लिए है। अधस्तन स्थितियां ने उदयावली के ऊपर की स्थितियां, सत्ता में पड़ी हुई उदयावली के ऊपर की स्थितियों के लिए क्या नियम है कि उनका उत्कर्षण होकर नए बंधने वाले पहले निषेक से लेकर ऊपर सर्वत्र उसका निक्षेप होगा। तो अतिस्थापना का क्या होगा, क्योंकि ये काल आवली से बड़ा है ना, इसलिए वहां अतिस्थापना का सवाल नहीं आता है। बीच वाले अगर इसके कॉन्टेम्प्रेरी यहां जो कोई निषेक हो गए तो वो आवली छोड़कर ऊपर उसका निक्षेप होगा। हाँ, वो अपनी अपनी पैरेलल में नहीं जाएंगे, ये तो पैरेलल है ना, उसमें क्या उत्कर्षण कहना। हाँ, ऊपर जाएंगे। हाँ, तो ये अब ऊपर से पहले सिद्ध करते हैं। ये तो नीचे के निषेकों की बात हो गई, अब ऊपर के जो निषेक है, सत्ता में पड़े हुए उपरिम निषेक जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, अंतिम लाइन 348 की, अब उपरिम स्थितियों के उत्कर्षण का विधान कहते हैं। ये जो सत्ता में पड़े हुए ऊपर के जो निषेक है उनका उत्कर्षण कैसे होता है उसको बताते हैं। यथा बंध के समय ही उत्कर्षण होता है और बंधने वाली प्रकृति का ही उत्कर्षण होता है, अन्य प्रकृति का उसमें उत्कर्षण नहीं हो रहा। अब कहते हैं स्थिति सत्कर्म से क्या मीनिंग है, सत्ता में जो स्थिति में जो निषेक पड़े हैं, समयाधिक स्थिति को बांधने वाले के, यानी मान लेते हैं कि 100 समय वाले सत्ता में पड़े हैं निषेक, होते तो है सागरों के, और अब किसी ने 101 समय वाली स्थिति बांधी नई, तो एक ही समय ज्यादा है ना बंद, सत्ता में पड़े हुए स्थितियों से एक समय ज्यादा है, तो जो पूर्वबद्ध कर्म की चरम स्थिति है यानी इसका अंतिम निषेक है उसका उत्कर्षण नहीं किया जा सकता। हाँ, क्योंकि वो इमीडिएट एक निषेक ऊपर के उसमें उत्कर्षण नहीं होगा। द्विचरम स्थिति का भी उत्कर्षण नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें तो 2 समय का ही गैप होगा। इस प्रकार एक आवली और अन्य आवली के असंख्यातवे भाग नीचे आने तक ले जाना चाहिए, यानी एक आवली तक के तो निषेक का उत्कर्षण नहीं ही होगा, आवली प्लस आवली का असंख्यातवा भाग, इतने चरम निषेक से सत्ता वाले निषेक उतर कर नीचे आना। जैसे हम 16 समय की आवली मान लिए और उसका असंख्यातवा भाग मान लेते हम 2 निषेक, 16 और 2 18 निषेक हम नीचे आए, वहां तक तो उत्कर्षण नहीं होगा। अभी तो हम एक समय अधिक वाला लिया है, इससे एक समय अधिक वाला लिया उसका तो उत्कर्षण नहीं होगा, यानी अभी हमने बंद कितना मान लिया है। नहीं देखो देखो, एक है सत्ता में पड़े हुए निषेक और एक है नए बंधने वाले। अब पहले में पहले हम कौन सी केस देख रहे हैं, इन केस नया बंध एक समय से अधिक है, बराबर। तो चरम निषेक जो सत्ता का उसका तो उपकर्षण नहीं होगा, द्विचरम का नहीं होगा, त्रिचरम का नहीं होगा, चौथे का, सत्ता की बात चल रही है, तो सत्ता के अंतिम आवली का तो उत्कर्षण नहीं होगा। अभी और असंख्यातवा भाग नीचे आना, उसका भी उत्कर्षण नहीं होगा, तो ऊपर से फर्स्ट निषेक कौन सा है जिसका उत्कर्षण हो सकता है, तो यहां बताते। हाँ, 349 पृष्ठ पर इस प्रकार, सेकंड लाइन, एक आवली और अन्य आवली के असंख्यातवे भाग नीचे आने तक ले जाना चाहिए। अन्य यानी सेकंड आवली, पहली ऊपर से एक आवली और दूसरे आवली का असंख्यात्व भाग, अन्य मत डालो, आवली प्लस आवली का असंख्यात्व भाग। हमने देखा ना, आवली हमने 16 मान लिए और असंख्यात्व भाग 2 मान लिया, ऊपर का आवली प्लस असंख्यात्व भाग, इतने निषेकों का उत्कर्षण नहीं होगा। हाँ, तो किसका होगा? अभी उसके बाद वाला जो निषेक है उसका उत्कर्षण होगा, नहीं सत्ता की बात चल रही। नए बंध के परमाणु कभी भी दिए ही नहीं जाते, उत्कर्षण जो होता है वो सत्ता वाले के होते हैं, और सत्ता वाले के परमाणु बंधने वाले में चले जाते हैं, उसको उत्कर्षण कहते हैं। नया जो बंध हो रहा है उसका कभी भी, वो तो बंध हो रहा है ना, उसको उत्कर्षण कहते ही नहीं है। उत्कर्षण किसको कहेंगे? जो ऑलरेडी पड़े हैं उनकी कुछ स्थिति है विशिष्ट, मान लेते 100वें नंबर है और 100वें नंबर से ऊपर चला जाएगा तो उसको कहेंगे हम उत्कर्षण। बंधने वाले के साथ वो ऊपर चला जाता है। हाँ, सत्ता में 100 समय है, 101 का हुआ। हाँ तो 200 हो गए तो जाएगा, अपन कहाँ तक जा सकता है उसकी भी हम कहेंगे ना। पहले में पहले तो यहाँ 101 का है, तो 100वां नंबर जो पुराना 100वां नंबर है उसका उत्कर्षण नहीं, 99 का नहीं, 98 का नहीं, हमने मान लिए 16 समय, 18 समय तक का उत्कर्षण नहीं होगा। हाँ नहीं नहीं, हाँ ऊपर से, हाँ ने भी असंख्यात भाग नीचे आ गए हैं, और एक ने आवली प्लस एक समय नहीं लिया है, आवली प्लस असंख्यात भाग लिया है। हाँ, ऊपर से दूसरे आवली का असंख्यात भाग, ये पूरा पढ़ेंगे ना तो ख्याल में आएगा। देखो फिर से इस प्रकार, सेकंड लाइन, एक आवली और अन्य आवली के असंख्यात भाग नीचे आने तक ले जाना चाहिए। सत्ता में पड़े हुए निषेकों में ऊपर से हम गिन रहे हैं, आवली के समय गिने और कितना नीचे आना, असंख्यात भाग, उससे इस डालना बीच में, उसे लिखा है ना, तो उससे नीचे की यानी आवली और असंख्यात भाग छोड़कर उसके नीचे की जो अधस्तन अनंतर स्थिति है, उसके नीचे की जो इमीडिएट नेक्स्ट निषेक है उसका उत्कर्षण किया जाता है। सत्ता में जो पड़े हैं उस ऊपर के आवली प्लस असंख्यात वे भाग का उत्कर्षण नहीं किया जाएगा, उसके नीचे वाले का उत्कर्षण होगा। उत्कर्षण को प्राप्त कराई जाने वाली उक्त स्थिति की अतिस्थापना आवली प्रमाण, अभी उसकी अतिस्थापना कितनी है, अभी नीचे हम आए ना 18 छोड़कर 19वें निषेक में आए, तो 19 के साथ वाला जो निषेक है उसके ऊपर आवली छोड़कर उसके ऊपर उसका निक्षेप होगा, तो निक्षेप कितने में होगा आवली छोड़ने पर, आवली के असंख्यात भाग निषेकों में उसका निक्षेप होगा। तो कहते हैं निक्षेप आवली के असंख्यात भाग मात्र होता है। उत्कर्षण को प्राप्त कराई जाने वाली स्थितियों का जघन्य निक्षेप स्तोक है, ये जघन्य निक्षेप है, कितना है आवली का असंख्यात भाग, एक या दो निषेक में नहीं लिया, आवली के असंख्यात भाग इतने में उसका निक्षेप होता है। अभी 19वां लिया ना हमने, ऊपर का 19वां निषेक में से कुछ परमाणु ऊपर चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे तो 19 से लेकर बीच में 16 छोड़ेंगे और ऊपर के दो में उसका निक्षेप होगा, क्योंकि 19वें नंबर थे तो 19 के नंबर के साथ वो इसका आया और फिर ऊपर 16 छोड़े, ऊपर दो बच गए तो उसमें दे दिया, यानी उसका अतिस्थापना वाली आवली मात्र, अतिस्थापना है वो आवली हुई, और जो मिनिमम पॉसिबल निक्षेप कितना है तो आवली का असंख्यात भाग, हाँ वो उतना ऊपर उसने निक्षेप होता, यानी एक या दो समयों में स्थितियों में निक्षेप नहीं होगा, ये बात कहना चाहते। मिनिमम निक्षेप भी कितना होगा, आवली के असंख्यात भाग इतना होगा, इसलिए आवली और असंख्यात भाग हम नीचे आए, असंख्यात भाग। जघन्याती स्थापना क्या? हाँ, यानी पुराने कर्मों से आवली मात्र ज्यादा होगा तो नहीं होगा उत्कर्षण। हाँ, तो होगा जघन्याति स्थापना, एक आवली मात्र होकर उससे असंख्यात गुणी है। जघन्याति स्थापना कितनी है? आवली, एक आवली। उससे यानी कितने? आवली के असंख्यात वे भाग से असंख्यात गुना है। नहीं समझे? हमने क्या देखा था? जघन्य निक्षेप कितना है? आवली का असंख्यात भाग। और अतिस्थापना कितनी है? आवली। तो असंख्यात वे भाग से आवली कितनी बड़ी है? असंख्यात गुना है ना। हमने 100 का 50वां भाग, तो 100 के 50वें भाग कितना है? 2। 2 से 100 कितने गुना है? 50 गुना। ऐसे आवली के असंख्यात भाग से आवली कितनी गुनी है? असंख्यात गुनी है। तो ये जो लिखा ना, उससे असंख्यात गुनी, उससे ने आवली के असंख्यात भाग से, समझ में आता है? देवेंद्र भाई कौन? आवली। आवली का असंख्यात भाग जो जघन्य निक्षेप कहा था, उससे जघन्य अतिस्थापनावली कितनी है? तो असंख्यात गुणी है। उत्कृष्ट अतिस्थापना संख्यात गुणी है। उत्कृष्ट तो आवली से संख्यात, यानी संख्यात आवली होगी, यानी अंतर्मुहूर्त। यानी अभी जो हमने देखा था ना, नीचे अंतर्मुहूर्त छोड़कर ऊपर चले जाते हैं, आबादा छोड़कर पहले निषेक में, उसमें उत्कृष्ट अतिस्थापना होगी। उत्कृष्ट निक्षेप असंख्यात गुणा है। उत्कृष्ट निक्षेप कहां से कहां तक होगा? ये पहले समय से लेकर ऊपर तक। तो कहते हैं क्योंकि वह उत्कृष्ट अबाधा हुआ है, आबाधा, और एक समय अधिक आवली से हीन कर्म स्थिति प्रमाण है। हाँ, उसका कारण बताया। निक्षेप यानी जिसमें डाले जाएंगे। उत्कृष्ट अतिस्थापना कितने लिए हमने? संख्यात गुणी, यानी संख्यात आवली, यानी अंतर्मूर्त वाली होगी, वो अतिस्थापना होगी नेचुरली, क्योंकि आवली से संख्यात गुणा यानी संख्यात आवली होगी ना। और फिर आगे उत्कृष्ट निक्षेप असंख्यात गुणा है, कितना होगा? अभी जितनी कर्म स्थिति उसमें डाला ना, कर्म स्थिति में सर्वत्र निक्षेप हो गया, तो वो कितना है? तो उत्कृष्ट आबादा छोड़ी उसमें, और एक समय अधिक आवली से हीन कर्म स्थिति प्रमाण लिया। एक सर्वत्र चला जाएगा। हाँ देखो अब ये किसका उत्कर्षण हो गया? या पहले निषेक का तो नहीं हो सकता है, सत्ता वाले आवली के ऊपर के निषेक का होगा। तो आवली के ऊपर का निषेक कहां तक चला जाएगा? पहले से लेकर ऊपर तक चला जाएगा। तो ये आवली छोड़ी ना हमने, उदयावली छोड़कर ऊपर का निषेक कहां कहां चला गया? तो ये आबाधा में से इसको माइनस करेंगे ना, तो इतने ऊपर इतने छोड़ा उसने आबाधा में से, ये उदयावली और एक समय, क्योंकि इसके ये वाला भी समय छोड़ देना उसके, तो वो कहां तक? तो कर्म स्थिति में गया, पर कर्म स्थिति में से आबाधा कम करना है, आबाधा कम करना है, परंतु ये पूरी आबाधा नहीं करना, यहाँ की उदयावली प्लस एक समय इसको भी छोड़ना पड़ेगा। देखो इसकी बात छोड़ो, आबादा की बात छोड़ दो, ये 17 नंबर का निषेक है, 17 नंबर का निषेक। अच्छा आबादा का किस समय का लेंगे? नई कर्म नए बंद का आबादा 30 समय हम लेते हैं। अब यहाँ 17 नंबर से ऊपर चले जाएंगे, नहीं वो तो अवली से ज्यादा गिनना पड़ेगा, 64 ये हम 64 समझते हैं ना, हाँ क्योंकि वो तो ज्यादा लेना पड़ेगा ना, संख्या तावली लेना पड़ेगा उसके लिए। तो ये 17वां निषेक है वो अभी 65 नंबर से ऊपर तक चला गया, जितनी कर्म की स्थिति है तो उसका निक्षेप कितने में चला गया? क्या देखो पूरी कर्म स्थिति कितनी है, एक से लेकर हम मान लेते 1000 समयों की स्थिति बांधी है, तो 65 से लेकर 1000 तक हमको गिनना है, बराबर है ना, उसमें निक्षेप हुआ है। तो 65 से लेकर 1000 में निक्षेप हुआ है, परंतु इसका नंबर ऑलरेडी 17वां था, तो 17 से लेकर कहां तक ऊपर चला गया ऐसा गिनना उसको, 17 को छोड़ना ना। तो ये जो 64 थे, 64 में से 17 माइनस करो और जो बचेगा उसको टोटल 1000 में से माइनस करो, ये 17 नंबर 65 नंबर में गया है, एक नंबर 65 में नहीं गया है। एक नंबर अगर जाता तो हम आबादा माइनस करते, परंतु 17 वाला 65 से लेकर 1000 में गया है, हाँ पुराना 17 वाला ऊपर चला गया है। हाँ यह 18वें नंबर ही नहीं है, नए बंध में 18वां नंबर ही नहीं है, नया जो बंध है 65 नंबर से ही शुरू होता है, पुराने नंबर पुराने जो है तो इसमें है। अभी जो पुराने है ना, पुराने जो 64 नंबर का होगा तो उसके ऊपर 16 छोड़कर वो ऊपर चला जाएगा, वो तो वहां ठीक है, पर अभी यहाँ क्या होता है उत्कर्षण में, पहले ये जो किसको क्या कहते हैं उसको अति स्थापना बड़ी है, बाद में आवली तक छोटी होती चली जाएगी, क्योंकि क्योंकि हाँ आबादा में से एक समय अधिक आवली माइनस करना उतना अति स्थापना है, आबादा में से हाँ 64 माइनस 17 या 65 माइनस 17 करो, इतनी अभी आबादा है और निक्षेप कितना है रिमेनिंग जो है उसका निक्षेप कितने में हुआ, तो इतने में हुआ। यानी 17 समय, एक अधिक आवली से हीन, यानी 17 भी घटाए उसमें से। ऊपर देखो उपकस्य निखे असंख्य जगण जैन कम्मठिदी उपकस्याय आबाय समत्तराय आवलिया चे उनिया, नीचे क्या लिखा है ये तो व्याघात की अपेक्षा बताए, देखो नीचे से पढ़ेंगे तो और ख्याल में आ जाएगा। ये जो फुटनोट में लिखा है जहाँ वो हाँ सिल्वर का और चार ऐसे है ना गोल्ड, पहली लाइन में बीच में से वाघा देना कदम, यानी व्याघात की अपेक्षा ये हो जाता है, तो ये किस तरह से होता है, जई संत कम्मादो बंदो, ये बधो हुआ है, समयुत्तरो तिससे ठिदिये नथी उपकड़ना, जहाँ सत्ता के कर्म से बंध एक समय अधिक है, वहाँ उसकी उत्कर्षण नहीं होता है, अंतिम स्थिति की उत्कर्षणा नहीं होती। जई संत कम्मादो बंधो दुसमयुत्तरो तिससे भी संत कम्म अगठि दिए नथी उक्कड़ना। जहाँ सत्ता के कर्म से बंध दो समय अधिक है, वहाँ भी सत्ता के कर्म की अग्रस्थिति, अग्रस्थिति यानी अंतिम निषेक, उसकी भी उत्कर्षणा उसका भी नहीं होता, उत्कर्षण नहीं होता। इत उन्होंने अंतिम समय के ही ऊपर घटाया है। यहाँ समझाते समय हमको किसका उत्कर्षण हो सकता है उसको नीचे आकर समझाया था। इत यानी इस प्रकार आवलियाय असंख्य यदि भागो जघन्या अहिच्छावना, यानी जघन्य में जघन्य अतिस्थापना कितनी है तो आवली के असंख्यात्वे भाग कितनी है। यदि जत्तिया जघन्या अहिच्छावना तत्तीयन अभ्यो संत कम्मादो बंधो तिससे भी संत कम्म अगठि दिए नथी उक्कड़ना, यानी जघन्य अतिस्थापना आवली का असंख्यात्वा भाग इतने अधिक अगर सत्ता के कर्म से बंध ज्यादा है, वहाँ भी सत्ता के कर्म के अग्रस्थितिया ने अंतिम निषेक के उत्कर्षण नहीं होता। अन्नो आवलियाय असंख्य यदि भागो जहन्नो निखेवो, नहीं नहीं बीच में गया, यदि जहन्य इच्छा सत्य न अभ्यो संत कम्मादो बंध तिस्से नथी उक्कड़ना। हाँ, अन्नो आवलियाय असंख्य यदि भागो जहन्नो निखेवो, अभी आवली के असंख्यात्वे भाग इतना जघन्य निक्षेप है, निक्षेप की बात चल रही है। हमने इसको पढ़ा था, ये दोबारा भी यहाँ बता रहे हैं। निक्षेप है, ये ऊपर की स्थिति की बात चल रही है। हाँ, आवली का यानी उसके ऊपर आवली छोड़कर आवली के असंख्यात्वे भाग इतने निक्षेप में उसका उत्कर्षण होगा। जयी जहन्याय अइच्छावनाय जहन्येन च निखेवेन एत्तिमेत्तेन संत कम्मादो, इस के ऊपर बिंदी लगाना, अधिरित्तो बंधो सा संत कम्म अगठिदी उपकडिज्जदी। जहाँ जघन्य अतिस्थापना और जघन्य निक्षेप इतने मात्र सत्ता के कर्म से अतिरिक्त वो बंध होता है, वहाँ सत्ता के कर्म की जो अंतिम निषेक है उसका उत्कर्षण होता है। तदो वो नहीं होगा, आवली का असंख्यात्वा भाग ऊपर चाहिए। तदो समयुत्तरे बंधे निखेवो तत्तिवो चेव अइच्छावना वड्डदी, अइ करना अच्छावना हुए ना, अइच्छावना वड्डदी। यानी एक्चुअली उन्होंने लास्ट में अंतिम निषेक के लिए जघन्य अतिस्थापना भी आवली का असंख्यात्वा भाग लिया है और निक्षेप जघन्य भी आवली का असंख्यात्वा भाग, ये अलग टाइप से बता रहे। तो अंतिम निषेक का ऊपर कहाँ चला जाएगा, आवली का असंख्यात्वा भाग छोड़कर असंख्यात्व भाग में निक्षेप होगा, उसके नीचे का कहाँ होगा। हाँ, वो अतिस्थापना बढ़ेगी, निक्षेप नहीं बढ़ेगा, निक्षेप उतना ही रहेगा, अतिस्थापना बढ़ते बढ़ते आवली मात्र हो जाएगी। ऊपर के निषेक के लिए अतिस्थापना आवली का असंख्यात्व भाग का यहाँ पर, और निक्षेप भी आवली का असंख्यात्व भाग का, जघन्य निक्षेप और जघन्य अतिस्थापना, वो बात मूल में नहीं की, वहां तो आवली से लेकर बढ़ाया था, ये दूसरी बात यहां बता रहे। देखो ये ऐसा कहना चाहते हैं, जो ऊपर की स्थिति है ना, ऊपर के स्थिति से एक समय ज्यादा होगा तो उत्कर्षण नहीं होता है, दो समय ज्यादा हो गए उत्कर्षण नहीं होता, आवली का असंख्यात्वा भाग इतना ज्यादा हुआ तो भी उत्कर्षण नहीं होता। अब और ऊपर चला गया तो आवली का असंख्यात्वा भाग छोड़कर ये जघन्य अतिस्थापना और ऊपर आवली के असंख्यात्व भाग इतना जघन्य निक्षेप, इतना तो हो सकता है ऊपर के निषेक का। अब ऊपर से दूसरे निषेक का कहां पर होगा, उसका भी निक्षेप उतने में ही होगा, परंतु यहाँ अति स्थापना बढ़ेगी। उसके नीचे उतर के आए उसका भी निक्षेप उधर ही होगा, अति स्थापना बढ़ेगी। नीचे उतना ही चले आओ, यहाँ उल्टी तरह से हमको समझाया था कि यहाँ से एक आउली और असंख्यात भाग इतना नीचे आते हैं तो यहाँ पूरी आउली, क्योंकि वो अति स्थापना बढ़ते बढ़ते एक आउली हुए और ऊपर आउली के असंख्यात भाग इतने निक्षेप हो गए। यहाँ दूसरी पद्धति से बताया है। उसमें तो ये जघन्य निक्षेप तो तब तक कायम रहेगा, उतना ही रहेगा, अति स्थापना आवली बढ़ते बढ़ते आवली प्रमाण होगी, यानी अति स्थापना बढ़ते बढ़ते आवली प्रमाण हो जाएगी। बाद में तो एक एक आवली छोड़कर ऊपर ऊपर निक्षेप होता है। एवं मिला जहां हमने करेक्शन किया ना उसके आगे, ताव अइच्छावना वड्डई जाव अइच्छावना आवलिया जादाती। इस प्रकार ये ऊपर की बात बता रहे हैं, जघन्य अति स्थापना आवली का असंख्यात भाग से शुरू करते करते निक्षेप उतना ही रहा और अति स्थापना बढ़ते बढ़ते कब तक बढ़ेगी, जब तक वो आवली मात्र नहीं हो जाती। तेन परम निक्षेव वड्ढई जाव उक्कसव निक्षवोत्ति। उसके बाद क्या होगा, अति स्थापना तो आवली मात्र ही रहेगी और निक्षेप बढ़ता चला जाएगा, यानी अपने अपने जो समान स्थिति वाले जो निषेक है वहां से ऊपर आवली छोड़कर उसके ऊपर सर्वत्र निक्षेप होगा। न्युवाघायेणेवं वाघाये संतकम्म हिग बंधो आवली असंख्य भागादि होई अइत्थावना नवरम। यानी निर्व्याघात और व्याघात ऐसे दो उन्होंने, यानी घात से और बिना घात से, ऐसे दो प्रकार से बताए। अभी उसमें अल्प बहुत वगैरह बताए, उसको अपना विषय नहीं है एक्चुअली। हाँ ऊपर की बात बताए। हाँ देखो आगे फिर पढ़ते हैं। संप्रति अल्प बहुत्व उच्चते, इसमें अल्प बहुत्व बताते हैं, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा उसी को बताते हैं। यहाँ जघन्य अतिस्थापना यश्च जघन्य निक्षेप एतौ द्वौपि सर्वस्तोकौ परस्परम च तुल्यो। यानी जघन्य अतिस्थापना और जघन्य निक्षेप दोनों ही अल्प है और समान है, जिसको अभी हमने पढ़ा था आवली का असंख्यात अभाव है। यतो द्वौपि एतौ आवली का सत आवली का सत का आवली का सत का असंख्येयतम भाग मात्र, आवली के असंख्यात भाग मात्र होता है। ताभ्याम असंख्येय गुणोत्कृष्ट अति स्थापना, यानी आवली के असंख्यात भाग से जघन्य अति स्थापना से आवली कितने गुना है, असंख्यात गुना है, तो उसको उत्कृष्ट अति स्थापना कहा। उत्कृष्ट अति स्थापना कहो या आवली कहो एक ही बात है। तस्या उत्कृष्ट आबाधा रूपत्वात् उत्कृष्ट आबाधा रूप होने से उत्कृष्ट अति स्थापना कही है। ये उत्कृष्ट अति स्थापना यह आबाधा रूप ले ली, आबाधा काल जो है ना आवली के ऊपर का निषेक आबाधा को छोड़कर ऊपर चला जाएगा, तो आवली तो रेगुलर अति स्थापना तो आवली मात्र है और उत्कृष्ट अति स्थापना उसको कहा संख्यात आवली। हाँ तो वो आबाधा के लिए ले लिया है, यानी जो 17 नंबर हमने माना वो कहाँ चला जाएगा, पहले निषेक में। तो ये आबाधा में से वो आवली और एक समय कम करेंगे, आबाधा माइनस आवली प्लस एक समय, इतनी उत्कृष्ट आबाधा, सॉरी आबाधा नहीं, उत्कृष्ट अति स्थापना हो जाएगी। ततो अपि उत्कृष्ट निक्षेपो असंख्येय गुणा, उससे भी उत्कृष्ट निक्षेप असंख्यात गुणा है। उत्कृष्ट अति स्थापना से उत्कृष्ट अति स्थापना कितनी है, आबाधा में से और आवली और एक समय माइनस किया था और उसका निक्षेप कहाँ पर है, पूरे जितनी कर्म स्थिति बांधी है उसमें से इतना भाग माइनस कर देना। देखो देखो, तत्त्वम् अपि उत्कृष्ट निक्षेप असंख्य यह यतः असौ समयाधिका अवलिकया अबाधया च हीना सर्वा कर्मस्थिति। यानी समयाधिक अवली और अबाधा से हीन सर्व कर्मस्थिति प्रमाण है, उतने में उसका निक्षेप है। लास्ट में छोड़ने क्यों फिर दोबारा? ततो की सर्वा कर्म स्थिति विशेषाधिका, उससे भी सर्व कर्म स्थिति विशेष अधिक है। कर्म स्थिति आबाधा लेकर कर्म स्थिति होती है, निषेक रचना तो आबादा को छोड़कर होती है, तो उसमें आबादा को मिलाएंगे तो विशेष अधिक हो जाएगी। अब हम आगे पढ़ते हैं। व्याघात है ना, घात से आगे पढ़ेंगे अभी। यह अर्थपद की प्ररूपना हुई, यहाँ प्रमाणानुगम का कथन करते हैं। प्रमाणानुगम यानी उसका प्रमाण बताएंगे। उत्तर प्रकृति संक्रम का अधिकार है, यह प्रकृति की बात नहीं है, उत्तर प्रकृति में स्थिति संक्रमण, क्योंकि स्थिति संक्रमण का ही अधिकार चल रहा है उसमें, उत्तर प्रकृतियों में स्थिति संक्रमण की बात चल रही है। वह चार प्रकार का है, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य और अजघन्य। देखो उत्तर प्रकृति स्थिति संक्रम में, ये जरा विषय परिचय निकालना, पांच विषय परिचय में पांचवा पेज, वो नीचे का बड़ा पैराग्राफ है ना, ये हमने पढ़ी हुई बात है, फिर दोबारा जरा लेते हैं। आगे स्थिति संक्रम का निर्देश करके उसकी प्ररूपना इस प्रकार की है, जो अभी हमने पढ़ा है उसको ही फिर थोड़ा दोबारा रिपीट करते हैं। स्थिति संक्रम दो प्रकार का है, मूल प्रकृति स्थिति संक्रम और उत्तर प्रकृति स्थिति संक्रम। स्थिति संक्रम तीन प्रकार से होता है, यथा स्थिति का अपकर्षण होने पर स्थिति संक्रम होता है, स्थिति का उत्कर्षण होने पर स्थिति संक्रम होता है, और स्थिति के अन्य प्रकृति को प्राप्त कराने पर भी स्थिति संक्रम होता है। अपकर्षण की अपेक्षा संक्षेप में स्थिति संक्रम का विचार इस प्रकार है, जो हमने पढ़ा था अपकर्षण, आज तो हमने उत्कर्षण पढ़ा है, कल अपकर्षण को भी पढ़ा था, उदीर्णा वगैरह में भी हमने उसको विस्तार से देखा था, है ना। उदयावली के भीतर की सब स्थितियों का अपकर्षण नहीं होता, ये भी बात हमने देखी थी, अपकर्षण होकर या उदीर्णा उसमें नहीं होती है। उदयावली के बाहर जो एक समय अधिक उदयावली प्रमाण स्थिति है उसका अपकर्षण होता है, जिसको हमने 17वें नंबर पर रखा था, है? अपकर्षण होकर उसका एक समय कम आवली के 2/3 भाग प्रमाण स्थिति को अतिस्थापना रूप से रखकर, हमने देखा था 16 में से ऊपर के 10 निषेक अतिस्थापना रूप से रखकर एक अधिक तृतीय भाग में निक्षेप होता है। यानी वो एक माइनस किया था उली का, 1/5 हुआ, उसमें एक मिलाया तो 6 समयों में निक्षेप हुआ। इससे आगे की स्थितियों का अपकर्षण होने पर एक आवली प्रमाण अतिस्थापना प्राप्त होने तक उसकी वृद्धि होती है और निक्षेप उतना ही रहता है। जैसे 18वें, 19वें, 20वें में से अपकर्षण होकर उन्हीं 6 में ही दिया जाएगा और वो 10 वाला बढ़कर 16 तक बढ़ेगा। इससे आगे अतिस्थापना अवस्थित रूप से एक आवली प्रमाण ही रहती है, बाद में अतिस्थापना एक आवली ही रहेगी कायम, यानी ऊपर के जो निषेक है अपने अपने नीचे के 16 समय छोड़कर उसके नीचे यानी आवली प्रमाण छोड़कर उसके नीचे आएंगे और निक्षेप उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। उत्कर्षण के विषय में अभी हमने जो पढ़ा था उत्कर्षण उसके बारे अभी बताते हैं। यह नियम है कि उदयावली के भीतर की सब स्थितियों का उत्कर्षण नहीं होता। हमने देखा था उदयावली के ऊपर के निषेक से प्रारंभ होकर उत्कर्षण होगा, एक समय अधिक उदयावली की अंतिम स्थिति का उत्कर्षण होता है, किंतु उसका नहीं बंधने वाली स्थिति में निक्षेप न होकर बंधने वाली जघन्य स्थिति से लेकर ऊपर की सब स्थितियों में निक्षेप होता है। अभी जो नया बंध हो रहा है उसमें उसका निक्षेप होगा ऊपर सर्वत्र। यह विधि उत्कर्षण को प्राप्त होने वाली नीचे की स्थितियों की कही है। यानी ये रूल किसके लिए बताया? नीचे के यानी उदयावली के ऊपर जो है स्थितियां उसकी बात बताई। ऊपर की स्थितियों का उत्कर्षण किस प्रकार होता है अभी जो हमने पढ़ा ना, ये पाटी पर स्लेट पर देखा सब। ऊपर ऊपर के जो सत्ता में पड़े हैं निषेक उसका उत्कर्षण कैसे होता है इसका विचार करने पर, यदि यह जीव सत्कर्म से एक समय अधिक स्थिति का बंध करता है, कम स्थिति का बंध करता है तो ऊपर के स्थितियों का उत्कर्षण होने का सवाल ही नहीं है। अब एक समय ज्यादा बंध करता है तो पूर्वबद्ध कर्म की अंतिम स्थिति का उत्कर्षण नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर अतिस्थापना और निक्षेप का अभाव है। एक समय ऊपर ना अतिस्थापना हो सकती उसमें ना निक्षेप हो सकता है। पूर्वबद्ध कर्म की द्विचरम स्थिति का भी उत्कर्षण नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर भी अतिस्थापना और निक्षेप संभव नहीं है। इस प्रकार पूर्वबद्ध कर्म की एक आवली और एक आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण स्थिति के नीचे जाने तक जितने भी स्थिति विकल्प हैं उनका उत्कर्षण संभव नहीं। ये बात यहाँ बताएं। और वहाँ जो हमने पढ़ा था वो आवली के असंख्यातवे भाग छोड़कर ऊपर जाता है ऐसा लिखा था। ये दो अलग अलग मत देखें, कारण वही है। हाँ, उससे नीचे एक स्थिति के आने जाने पर जो स्थिति विकल्प स्थित है यानी वहाँ का जो निषेक है उसका उत्कर्षण हो सकता है, और वैसी अवस्था में एक आवली प्रमाण अतिस्थापना होती है तथा शेष आवली का असंख्यातवा भाग निक्षेप होता है। ये जघन्य निक्षेप कहने में आएगा। इस प्रकार संक्षेप में उत्कर्षण का निर्देश करके आगे निक्षेप और अतिस्थापना का अल्प बहुत्व बतलाया है। जो अभी हमने पढ़ा जघन्य निक्षेप से अतिस्थापना असंख्यात गुणी होती जो बताया था उसको यहाँ पढ़ते हैं। नहीं, ये तो प्रमाणानुगम का निर्देश करेंगे। पहले हम पढ़ के यहीं पढ़ के फिर पढ़ेंगे वहाँ पर, ठीक है? अच्छा, आपको यहाँ पढ़ना है, यहाँ पढ़ेंगे। आगे उत्तर प्रकृति संक्रम के प्रमाणानुगम का निर्देश करते हुए अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना प्रमाण अनुगम, वह उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य और अजघन्य के भेद से चार प्रकार का बतलाया है। जब हमने प्रकृति संक्रम देखा था उसमें उत्कृष्ट का कोई सवाल ही नहीं, बस प्रकृति संक्रमित होती है। अब यहाँ स्थितियों में संक्रमण होता है इसलिए उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट कहेंगे। उदाहरणार्थ मति ज्ञानावरण का उत्कृष्ट स्थिति संक्रम दो आवली कम 30 कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण होता है, क्योंकि उत्कृष्ट स्थिति संक्रम, जैसे हमने आपको याद होगा स्थिति उदीर्णा की बात की थी हमने, कितने स्थितियों में से कितने निषेकों में से उदीर्णा होती है, तो हमने देखा था कि अपकर्षण की बात है यहाँ पर, तो बंधने के बाद आवली के बाद उसकी उदीर्णा चालू हो जाएगी। तो एक बंधावली और एक वो उदयावली छोड़कर, दो छोड़कर, क्योंकि बंधावली में कुछ नहीं होता और फिर नीचे की आवली छोड़कर ऊपर से ऊपर के स्थितियों में से अपकर्षण होगा, इसलिए दो आवली निकाल देना। तो कितने अधिक से अधिक स्थितियों में से अपकर्षण होता है? तो जो अभी हमने देखा दो आवली छोड़कर जो उत्कृष्ट स्थिति है उसमें से अपकर्षण होगा। तो यही यहाँ कहते हैं संक्रमण में दोनों लेना, उत्कर्षण भी अपकर्षण जो कुछ पॉसिबल है उसको ले सकते हैं। तो यहाँ कहा मति ज्ञानावरण का उत्कृष्ट स्थिति संक्रम, जो हमने उत्कृष्ट स्थिति उदीरणा के प्रकरण में देखा था, दो अवलिकम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति, वही बात यहाँ बता रहे। दो अवलिकम 30 कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण होता है, क्योंकि किसी भी प्रकृति का बंद होने पर एक आवली काल तक उसका संक्रमण नहीं होता, इसलिए एक आवली तो यह कम हो जाती है, इसके बाद उदयावली को छोड़कर शेष स्थिति का अन्य बंध को प्राप्त होने वाली प्रकृति में संक्रमण होता है, इसलिए एक आवली यह कम हो जाती है। इस प्रकार उक्त दो आवलियों को छोड़कर शेष सब स्थिति संक्रमण से प्राप्त हो सकती है, इसलिए मति ज्ञानावरण की उत्कृष्ट संक्रम स्थिति दो अवलिकम 30 कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण कही है। संक्रमण भी चलता है, संक्रमण भी चार प्रकार बताए ना, प्रकृति का संक्रमण होना, स्थिति का होना, अनुभाग का होना, प्रदेश का तो होगा ही होगा, कितने प्रदेश जाते हैं उसका भी अल्प बहुत तो कहेंगे। हाँ, बंद होता है, उदय है, उदीर्णा है, संक्रमण, ये तो हर समय चल रहा है। हाँ, प्रत्येक कर्म में देखा हमने, आयु में भी होते हैं, आयु का आपस में नहीं होता उत्तर प्रकृति में, पर आयु का उदीरणा होती है, स्थिति बदलती है, वो स्थिति संक्रम तो उसमें भी होगा, अनुभाग भी बदलेगा। हाँ देखो, उस समय उस कर्म की स्थिति आवली कम 30 कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण होती है। क्या कहते हैं, संक्रमण कितने में से हुआ, तो 30 कोड़ाकोड़ी में से दो आवली कम, पर उस समय वहां निषेक रचना कितनी थी, उदयावली को लेकर संक्रमण हो रहा था दो आवली में से कम, परंतु वहां उदयावली भी उसमें गिनेंगे, सत्ता में कितने निषेक थे, तो आवली कम कर्म स्थिति, बंधने के बाद आबाधा उदीरणा के द्वारा आबाधा कम कर दी ना उसने, तो आवली तो रहेगी ही उदीरणा की अपेक्षा आबाधा, तो उसको छोड़ेंगे तो सत्ता में कितने हैं, तो आवली कम 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम प्रमाण, इसलिए उसका यत स्थिति संक्रम, ये ज स्थिति लिखा है ना सब जगह, तो उसको यत स्थिति कहा, एक आवली कम 30 कोड़ाकोड़ी सागरम प्रमाण कहा है। इस प्रकार मूल में मात्र मति ज्ञानावरण का उदाहरण देकर शेष कर्मों के विषय में उत्कृष्ट स्थिति उदीरणा के समान लिखा है। देखो, हमने स्थिति उदीरणा में ऐसा ही रूल लिखा था, स्थिति उदीरणा कितने स्थितियों में से उदीरणा होती है, और ज स्थिति कहो या यत स्थिति कहो, तो सत्ता में कितने उस समय कितने निषेक है उसकी बात की थी। हाँ, उत्कृष्ट स्थिति संक्रम से जानने की सूचना की है, और जिन कर्मों में उत्कृष्ट स्थिति उदीरणा से भेद है उनका अलग से निर्देश कर दिया गया है, सो विचार कर उसे घटित कर लेना। ये तो क्या बात आने वाली है उसके यहाँ थोड़े में बताया, स्वतंत्र रूप से यत स्थिति संक्रम कहा, यत स्थिति संक्रम है नहीं, उस समय सत्ता में कितने निषेक पड़े हैं उसको कहा, नहीं आबाधा गई ना, बंद से लेकर आवली तक उसकी निषेक रचना नहीं होती है, आबाधा तक नहीं थी निषेक रचना, परंतु वो अपकर्षण द्वारा नए निषेक वहां तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार मूल जानने की सूचना की, और जिन कर्मों के उत्कृष्ट स्थिति उदीरणा से भेद है उनका अलग से निर्देश कर गया है, सो विचार कर घटित कर लेना। स्वतंत्र रूप से विचार किया जाए तो उसका तात्पर्य इतना है, यहाँ पढ़ा था इतना, कि जो बंध से उत्कृष्ट स्थिति वाली प्रकृतियां हैं उनका उत्कृष्ट स्थिति संक्रम दो आवलिकम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण प्राप्त होता है, यहाँ यानी बंध की अपेक्षा से जो अधिक स्थिति वाली प्रकृतियां हैं उसका स्थिति संक्रम होना यानी अपकर्षण होना कितना होगा? दो अवलिकम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण, जो अभी मति ज्ञानावरण पर घटित किया था, और उत्कृष्ट यत स्थिति संक्रम, एक अवलिकम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण प्राप्त होता है, परंतु जो बंधोत्कृष्ट स्थिति वाली प्रकृतियां न होकर संक्रमोत्कृष्ट स्थिति वाली प्रकृतियां हैं, उनका उत्कृष्ट स्थिति संक्रम तीन आवलिकम उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण प्राप्त होता है। ये बंधने की अपेक्षा न लेकर संक्रमण की अपेक्षा, जो प्रकृति संक्रमित होती है उसकी अपेक्षा एक संक्रमणावली बढ़ जाएगी, एक बंधावली, एक उदयावली और एक संक्रमणावली। और उत्कृष्ट यत स्थिति संक्रम, दो आवलिकम उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण प्राप्त होता है, क्योंकि तब उसमें सत्ता में कितने हैं जो प्रकृति संक्रमित होती है, उसकी अपेक्षा एक आवली और ज्यादा लेना। मात्र दर्शन मोह की तीन प्रकृतियों में तथा आहारक द्विक और तीर्थंकर प्रकृति में जो विशेषता है उसे अलग से जान लेना चाहिए। चारों आयुओं का जो उत्कृष्ट स्थिति बंध है वही उनका उत्कृष्ट स्थिति संक्रम है, क्योंकि बंधने के बाद आयु बंध हुआ ना, निषेक रचना हुई है, तो पूर्व के आबादा काल में उसके नीचे आना वगैरह होता है, वहां पर उदय नहीं है परंतु ऊपर से नीचे परमाणु आते रहते हैं, क्योंकि एक आयु का अन्य आयु में संक्रमण नहीं है। मात्र इनकी यत स्थिति एक आवलिकम उत्कृष्ट आबादा सहित अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कही है। इनकी उत्कृष्ट यत स्थिति इतनी कैसे कही है, इस विषय को श्वेतांबर कर्म प्रकृति के टीका में स्पष्ट किया है। उसका भाव यह है कि आयु बंध होते समय बंधावली प्रमाण काल जाने पर आयु बंध के प्रथम समय में बंधे हुए कर्म का उत्कर्षण होने पर उसकी आबादा सहित उत्कृष्ट यत स्थिति उक्त काल प्रमाण प्राप्त होती है। आयु का बंध अंतर्मुहूर्त तक होगा तो एक आवली काल जाने पर, अभी बंधने का कार्य चल ही रहा है तो जो ऑलरेडी बंधे थे उसका उत्कर्षण होता है, उत्कर्षण की बात चल रही है यहाँ पर। यह एक समाधान है, अथवा कहकर दूसरा समाधान इस प्रकार किया है कि बंधावली के बाद आयु की निर्व्याघात रूप अपवर्तना यानी अपकर्षण भी सर्वदा संभव है, इसलिए उसकी अपेक्षा पूर्वोक्त प्रमाण यत स्थिति जान लेनी चाहिए। अभिप्राय इतना है कि पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्य के प्रथम त्रिभाग में परभव संबंधी उत्कृष्ट उत्तर रह गया, आयु का बंद होने पर उसकी निषेक रचना तो नरकायु और देवायु की 33 सागर प्रमाण तथा तिर्यंचायु और मनुष्यायु की तीन पल्ले प्रमाण ही रहती है, यानी किसी पूर्वकोटि मनुष्य ने आयु का बंध किया, मान लेते मैक्सिमम आयु बांधी, तो देवायु 33 सागर की बांधी, नरकायु 33 की बांधी, मनुष्य और तिर्यंच की तीन तीन पल्ले की, जो अलग अलग केसेस है, तो आबादा काल पूर्वकोटि का त्रिभाग उससे अलग है, यानी आबादा कितनी कहेगी कहलाएगी पूर्व कोटि का त्रिभाग, परंतु आयु का बंध जो 33 सागर है वो आबादा का छोड़कर होता है। आबादा तो पूर्वायु की कहलाती है और ये स्थिति तो वो पहले समय से जितने भोगेगी उसको स्थिति कहेंगे, इसलिए इनका जो स्थिति बंध है वही स्थिति संक्रम है, जितने बांधी है ना उसमें से स्थिति संक्रम कहलाएगा। अभी इसमें वो आबादा की बात कुछ हिनादिक नहीं करनी है, पर इनके बंध के प्रथम समय से लेकर एक आवली काल जाने पर इन निषेक स्थितियों में बंध होते समय उत्कर्षण और बंध होते समय या बंध समय के बाद भी अपकर्षण होने लगता है। ऑलरेडी जो आयु बंधी है, जो बंधी जा रही है, अंतर्मुहूर्त तक आयु का बंध होता है, तो बंधावली के बाद ऑलरेडी बंधे हुए परमाणुओं में उत्कर्षण हो सकता है, नीचे के स्थिति के परमाणु ऊपर के स्थिति में चले जाएंगे। या दूसरी बात क्या होती है, बंद होते समय भी और बाद में भी, यानी अभी पूर्व आयुष्य में उसकी जो अबाधा चल रही है उस काल में अपकर्षण होता है, यानी ऊपर के स्थितियों में से नीचे के स्थितियों में परमाणु आते रहते हैं। उत्कर्षण के लिए बंद के समय कहेंगे। अब ये बंधने के बाद, अभी पूर्व कोटि के त्रिभाग में आयु बंधी है, अब उदय होने के लिए वन थर्ड पूर्व कोटि बाकी है, उसमें से आयु तो नहीं घटेगी परंतु वहाँ जो ऊपर के निषेकों में से परमाणु नीचे आएंगे। अपकर्षण होने लगता है। यतः इस उत्कर्षण और अपकर्षण में एक स्थिति से प्रदेश समूह उठकर, यानी एक निषेक में से परमाणु निकलकर दूसरी स्थिति में निक्षिप्त होते समय स्थिति के परिणाम में आबाधा काल भी गर्भित है। स्थिति के परिणाम में के परिमाण में, परिमाण चाहिए ना, प्रमाण है ना, पर यह उत्कर्षण अपकर्षण बंध के प्रथम समय से लेकर एक आवली काल तक संभव नहीं है। यही कारण है आयु कर्म की यथ स्थिति कहते समय नरकायु आदि की अपनी उत्कृष्ट स्थिति में एक आवली कम उत्कृष्ट आबाधा काल भी सम्मिलित कर लिया है। अभी हम अपने विषय पर पढ़ेंगे क्योंकि ये तो कहाँ है, कहाँ पढ़ रहे हैं आप? छः नंबर। हाँ हाँ, आयु की निर्व्याघात अपवर्तन है अपकर्षण, निर्व्याघात रूप अवगर्तन है अपकर्षण। नहीं, निर्व्याघात रूप अपवर्तन है नेचुरल अपकर्षण, और ये जो व्याघात यानी मेरे ख्याल से कदलीघात रूप होगा वो नहीं है। नहीं, ये निर्वाघात की बात चल रही है, व्याघात की मैं कर रही हूँ। व्याघात यानी घात होना, निर्व्याघात यानी क्या है, निषेक तो उतने के उतने रहेंगे, मात्र अपकर्षण होगा, और घात यानी स्थिति कम हो जाएगी ना। पता नहीं, अभी हम मूल विषय पढ़ेंगे ना, इसमें तो कुछ शॉर्ट में बता दिया उन्होंने, हम मूल पढ़ेंगे तो ही थोड़ा विस्तार से हमें ख्याल में आएगा। यहाँ क्या है, बहुत बड़ा विषय छोटे छोटे में बताए थे तो हाँ यही विषय फिर यहाँ आने वाला है। 349 पर आते हैं, फिर यहाँ प्रमाणानुगम का कथन करते हैं। उत्तर प्रकृति संक्रम का अधिकार है, स्थिति संक्रम की बात उत्तर प्रकृतियों में लागू होती है। वह चार प्रकार का है, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य। मति ज्ञानावरण का उत्कृष्ट स्थिति संक्रम दो आवलियों से हीन 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम मात्र होता है। ये अपकर्षण के द्वारा जो अभी हमने पढ़ा था प्रस्तावना में, जो स्थिति संक्रम यानी जब ये हो रहा है उस समय सत्ता में निषेक कितने हैं, यत स्थिति कहा था उसको, एक आवली से हीन 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम मात्र होता है। वहां तो बंधावली और उदयावली दो आवली कम किए थे, परंतु यत स्थिति में उस समय स्थिति कितनी है, तो बंधावली यानी सॉरी उदयावली के समय से वर्तमान समय से कितनी है उसको लेना। ये दो आवली कम की थी तब उदयावली और बंधावली दो लेना। और यत स्थिति में बंधावली को छोड़कर, क्योंकि उसमें निषेक ही नहीं है ना, इसलिए पूर्व में जैसे उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा कथन किया गया है यह 15वीं पुस्तक में उत्कृष्ट स्थिति उदीर्ण का जो प्रकरण था, कितने निषेकों में उसे उदीर्ण हो रही है, वैसे ही सभी कर्मों के उत्कृष्ट स्थिति संक्रम का भी कथन करना चाहिए। सभी कर्मों में अपनी अपनी कितनी उत्कृष्ट स्थिति उदीर्ण होती थी, हमने जहाँ जहाँ देखी थी, उसको यहाँ भी लागू होगा। यानी अपने अपने जो उत्कृष्ट स्थिति है, जैसे ज्ञानावरण में 30 कोड़ा कोड़ी कहा, वैसे अन्य में जो अपनी अपनी जो है मिथ्यात्व में 70 कोड़ा कोड़ी जो कुछ है वो लागू हो गया। उससे जो यहाँ जो कुछ विशेषता है उसे बतलाते हैं, यानी उसमें और इसमें जो कोई वेरिएशन है, जहाँ कोई अंतर है उसको बताते हैं। देवगति देवानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी, द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय जाति, आतप कौमा लगाना, सूक्ष्म अपर्याप्त और साधारण, इनका उत्कृष्ट अध्याच्छेद दो व तीन आवलियों से हीन 20 कोड़ाकोड़ी सागरोपम मात्र है। अध्याच्छेद यानी उसकी जो निषेक रचना है, उत्कृष्ट निषेक रचना, दो और तीन आवलियों से हीन, दो और तीन यानी दो यानी उत्कृष्ट स्थिति संक्रम और यत स्थिति संक्रम, जगन्य ज स्थिति और वो उत्कृष्ट, हाँ उसका स्वामी भी उत्कृष्ट स्थिति को बांधकर और प्रतिभग्न होकर फिर इन नाम कर्म की प्रकृतियों को बांधने के पश्चात आवली मात्र काल को बिताने वाला जीव होता है। यानी पहले उत्कृष्ट स्थिति बांधा है और फिर उससे छूटकर फिर इन कर्मों को बांधने वाला जीव, यानी फिर नया बंधन, बीच में नहीं बांध रहा था फिर बांधने लगा है, उसको लेना। परंतु आतप का उत्कृष्ट स्थिति संक्रम जिसने बंधावली को बिताया है उसके होता है। यह उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा की अपेक्षा यहाँ विशेषता है। देवायु और नारकायु का उत्कृष्ट स्थिति संक्रम, या आयु की बात हो रही, ऊपर गति की बात की थी, देवगति वगैरह की, 33 सागरोपम और ज स्थिति संक्रम आवलिकम पूर्व कोटि के त्रिभाग से अधिक 33 सागरोपम मात्र होता है। क्या कहते हैं, उत्कृष्ट स्थिति संक्रम तो 33 सागरोपम जो बांधी है उसमें से होता है, क्योंकि उत्कृष्ट स्थिति संक्रम में तो हमने वो बंधावली के बाद वो उत्कर्षण भी होता है उसको भी ले सकते हैं उसमें, और ज स्थिति संक्रम जैने उस समय उसके कितने निषेक हैं, आवलिकम पूर्व कोटि के त्रिभाग से अधिक 33 सागरोपम मात्र होता है। मनुष्यायु और तिर्यगायु का उत्कृष्ट स्थिति संक्रम 3 पल्योपम और ज स्थिति संक्रम आवलिकम पूर्व कोटि के त्रिभाग से अधिक 3 पल्योपम मात्र होता है। जघन्य स्थिति संक्रम के प्रमाणानुगम का कथन करते। अभी तक हमने क्या देखा, उत्कृष्ट स्थिति संक्रम, अब जघन्य स्थिति संक्रम की बात करेंगे, उसका प्रमाण बता रहे हैं। यथा 5 ज्ञानावरण 4 दर्शनावरण 5 अंतराय का जघन्य स्थिति संक्रम एक स्थिति और ज स्थिति संक्रम एक समय अधिक आवली मात्र है, ये याद है कहाँ होता है, हाँ जघन्य स्थिति उदय 12वें में एक आवली और एक समय बाकी है, वहाँ उसकी लास्ट में उदीर्ण होगी, बाद में उदीर्ण रुक जाती है, उदीर्ण की विच्छित्ति होती है। तो कितने निषेकों में से उदीर्ण हो रही है, तो एक में से, हमने देखा था ना 16 समय की आवली मानेंगे तो 17वें निषेक में से नीचे आ जाएगी, उसके बाद उदीर्ण रुक जाएगी, तो उसको कहा यहाँ जघन्य स्थिति संक्रम कहा, वो एक स्थिति वहाँ घटित होती है, और उस समय 17 में कितने निषेक बाकी है, हाँ 17 ने आवली प्लस एक समय, तो एक समय अधिक आवली मात्र है। निद्रा और प्रचला का जघन्य स्थिति संक्रम एक स्थिति और ज स्थिति संक्रम दो आवली और एक आवली के असंख्यातवे भाग से अधिक है, हाँ 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 बताए अवली का संख्या तो अभा इसका स्वामित्व आगे आने वाला है। देखो ये 352 पर लेते हैं, इसका स्वामित्व के साथ साथ पढ़ेंगे तो जरा ख्याल में आएगा। नीचे का पैराग्राफ जघन्य स्थिति संक्रम के स्वामित्व का कथन करते हैं, जो अभी हम पढ़ रहे हैं प्रमाण पढ़ रहे हैं, परंतु उसका स्वामी कौन है उसकी बात यहाँ बता रहे हैं। 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण, 5 अंतराय की जघन्य स्थिति का संक्रम किसके होता है? तो जिसके चरम समयवर्ती छद्मस्थ होने में एक समय अधिकावली मात्र शेष है उसके उपर्युक्त प्रकृतियों का जघन्य स्थिति संक्रम होता है। ये तो समझ में आया था, निद्रा प्रचला की बात पढ़े। निद्रा और प्रचला का जघन्य स्थिति संक्रम किसके होता है? जिसके अंतिम समयवर्ती छद्मस्थ होने में 2 आवली और आवली का असंख्यात भाग शेष रहा है उसके निद्रा और प्रचला का जघन्य स्थिति संक्रम होता है। हाँ, उसके बाद नहीं होता, यहाँ होता है। तो वहाँ जघन्य स्थिति उसका प्रमाण एक स्थिति नहीं कहलाई, जघन्य एक स्थिति है और जो स्थिति संक्रम वहाँ उसकी सत्ता कितनी पड़ी है? 2 आवली और आवली का असंख्यात भाग, तो वहां उसकी उदीर्णा रुक जाएंगे। निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यान वृद्धि, मिथ्यात्व, ये फिर वापस आए 351 में आना, 351 में आना। पेज पलट गया मेरा, अपना प्रमाणानुगम का विषय निकालना। हम बीच में ही अपना विषय छोड़कर आगे पढ़ने गए थे ना स्वामित्व को, अब प्रमाण को पढ़ेंगे। 351 पृष्ठ पर निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यान वृद्धि, मिथ्यात्व, 12 कषाय, सम्यक मिथ्यात्व, स्त्री वेद और नपुसक वेद का जघन्य स्थिति संक्रम पल्योपम के असंख्यात्व भाग मात्र है। यानी यहाँ क्या समझना, जैसे जघन्य स्थिति संक्रम ज्ञानावरण में एक स्थिति घटाई थी, तो इसमें ऐसा लेना कि जब उनकी मिनिमम पॉसिबल अभी उदीर्णा बाद में नहीं होगी, ऐसे जब समय आएगा उस समय उसकी स्थिति कितनी पड़ी है, कितने स्थितियों में से उदीर्णा हो रही है, विच्छित्ति रहनी, पर उस समय कितने उदयावली के ऊपर कितनी स्थिति बाकी है उसमें से उदीर्णा होगी ना, नहीं समझे? वहां तो आवली और 17 समय बाकी थे तभी उसकी तो उदीर्णा रुक गई, उसमें एक ही स्थिति में से उदीर्णा हुई। अब यहाँ अभी मिथ्यात्व की बात है या अन्य कोई, जो मिथ्यात्व की उदीर्णा कितने स्थितियों में से जघन्य में से जघन्य हो सकती है उसको लेना है। नहीं समझे? मिथ्यात्व को छोड़ दो, अब यहाँ संक्रम भी ले लेना, संक्रमण भी लेना है इसमें। मिथ्यात्व में से उसमें संक्रमित होते जाए, हाँ, तो उस समय उसकी स्थिति कितनी बाकी है सत्ता में, उसको जघन्य स्थिति संक्रम कहा। या संक्रमण होगा तो कांडकों में भी होगा, तो वो कांडक कितने का होगा? हाँ, साता और असाता वेदने का जघन्य स्थिति संक्रम अंतर्मूर्त है, यानी कितने स्थितियों में से होता है उसको लेना है। हाँ? आगे आगे भी स्वामित्व तो पहले पढ़ना है क्या? इसके साथ साथ पढ़ेंगे। हाँ, अभी स्वामित्व निकालना, फिर दोबारा 352 पर निद्रा निद्रा की बात, लास्ट लाइन, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्त्यान वृद्धि का जघन्य स्थिति संक्रम किसके होता है? वह अंतिम स्थिति कांडक के चरम समय में वर्तमान क्षपक के होता है। क्या कहते हैं ये स्थिति कांडक करते हैं ना, क्षपक श्रेणी में स्थिति कांडक घात के द्वारा उसका जो, तो कितना वो कांडक बड़ा है, तो वहां उसका जघन्य स्थिति संक्रम होगा। सातार असाता वेदनी का जघन्य स्थिति संक्रम किसके होता है? वह अंतिम समयवर्ती सहयोगी के होता है। अभी स्थिति संक्रम लेना है तो यहाँ उदीरणा लेनी के नहीं लेनी? हाँ वेदनी की उदीरणा की विच्छित्ति कहाँ होती? वो छठे छठे में ही रुकती है वेदनी की। ये साता असाता की बात है ना, तो वहां जो स्थिति संक्रम जो कहा है ना, देखो एक होती उदय रूप, यानी उसमें तो किसी के साता का उदय किसी के असाता का उदय है, तो एक के उदय मिट जाता है अन्य रूप हो जाते हैं, तो अन्य रूप होकर उदय में आएगा तो उसमें ये अंतर्मूर्त वाली भी स्थिति, उस समय उसकी स्थिति कितनी है तो अंतर्मूर्त के बाकी अंतिम समयवर्ती सहयोगी है। हाँ चौदहवें वाला का अंतर्मूर्त बाकी है ना सत्ता में, उसको लेना। मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य धर घ करना उसका, जघन्य स्थिति संक्रम किसके होता है? वह अंतिम स्थिति कांडक के चरम समय में वर्तमान दर्शन मोहक शपक के होता है। ये कांडक के द्वारा वहां संक्रमण चलता है, तो अंतिम कांडक अभी मिथ्यात्व में से सम्यक मिथ्यात्व रूप होने जा रहा है, तो उसके एक फाली दो फाली तीन फाली ऐसे एक एक लॉट चला जाएगा, जो अंतिम जो लॉट है तो वहां जो मिनिमम पॉसिबल स्थिति संक्रम वहां पर होगा, क्योंकि उसकी स्थिति भी घटती चली जाएगी और वो स्थिति कांडक भी छोटा होता चला जाएगा, इसलिए वहां लिया। सम्यक मिथ्यात्व में भी वही रूल लेना। शपक कब? अनंतानुबंधी कषायों का जघन्य स्थिति संक्रम किसके होता है? तो अनंतानुबंधी कषायों के अंतिम स्थिति कांडक के चरम समय में वर्तमान ऐसे अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाले जीव के होता है। विसंयोजना में भी जो कांडक बनते हैं तो अंतिम कांडक का जो अंतिम समय है। आठ कषायों का ये हमने इसको पढ़ा था क्या प्रमाण में? आठ कषायों को नहीं लिया था, बारह कषाय को लिया था। बारह कषायों में से अनंतानुबंधी बताए, अभी आठ कषाय भी पढ़ेंगे। आठ कषायों का जघन्य स्थिति संक्रम किसके होता है? वह अंतिम स्थिति कांडक की चरम फाली को नष्ट करने वाले ऐसे आठ कषायों के क्षपक को होता है। ये आठ कषायों का क्षपक कौन से गुणस्थान वर्ती होता है? हाँ देवेंद्र भाई, ये नवे गुणस्थान में होता है। नवे देखो क्यों आठ को अनंतानुबंधी का कहाँ छोड़ा? हाँ जब उसने क्षायिक सम्यक तो प्राप्त किया, क्षपक श्रेणी चढ़ने वाला क्षायिक सम्यक दृष्टि चढ़ सकता है, तो उसने दर्शन मोह के पहले पहले अनंतानुबंधी का विसंयोजन करके क्षय किया था, है ना? तो सात का तो ऑलरेडी क्षय किया ना, अब वो आठवें में तो कोई क्षय का कार्य होता ही नहीं है, तो नवे में होता है। वो आठ कषायों को क्षय करेगा और फिर वो सोलह प्रकृतियों की भी करेगा क्षय। याद है कौन सी? वो ये नाम कर्म की तेरह इतने तो याद है, और स्थान वृद्धि वगैरह तीन, इनका सोलह का क्षय होता है, उसके पहले ये आठ का भी क्षय होता है, तो उसका क्षय करने वाले की बात है यहाँ। तो उसका क्षय करने वाले के अभी हमने पढ़ा ना, उसका जो अंतिम स्थिति कांडक की चरम फाली को नष्ट करने वाले होते हैं। हाँ आठ में ने प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान। अब स्त्री वेद नपुंसक वेद को भी हमने पढ़ा था, पल्लोपम के असंख्यात विभाग वाला, यानी उस समय उसकी स्थिति कितनी है सत्ता में ये दर्शाते हैं। पल्ले के असंख्यात विभाग इतनी स्थिति पड़ी है। नपुसक वेद का जघन्य स्थिति संक्रम किसके होता है? वह नपुसक वेद से क्षपक श्रेणी पर उपस्थित हुए उस क्षपक के होता है जो नपुसक वेद के, एक्चुअली एक ही वाक्य है, कौमा चाहिए, जो नपुसक वेद के चरम स्थिति कांडक की चरम फाली का क्षेपण कर रहा है। स्त्री वेद का जघन्य स्थिति संक्रम किसके होता है? जो क्षपक स्त्री वेद के उदय अथवा उसके अनुदय के साथ क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ होकर स्त्री वेद के चरम स्थिति कांडक की चरम फाली का संक्रमण कर रहा है। हाँ लिखा ना, नपुसक वेद से क्षपक श्रेणी पर उपस्थित हुए क्षपक के होता है, और स्त्री वेद में उसका उदय वाला या अनुदय वाला लिया, दोनों लिए, यानी वो जो क्षपक श्रेणी पर है ना, वो तो सत्ता में पड़े हुए उसका क्षय करते करते चढ़ता है, उसकी बात है। यहाँ पर पुरुष वेद रूप से हो जाएगा वो। हाँ, नपुसक वेद वाला है वो पहले उसके क्षय कर देता है, यानी उसका उदय मिटता है। नहीं, वो पहले ही उसका यानी उसका उदय पहले मिट जाता है। उसकी क्षपणा करने का भी काल अलग अलग, पहले नपुसक वेद का क्षय करता है, फिर स्त्री वेद का, फिर पुरुष वेद का, इस तरह से एक सपना सर पढ़ना पड़ेगा फिर। छह नौ कषायों का कषायों का हुआ है, कषायों का जघन्य स्थिति संक्रम किसके होता है, ये हुआ है कि नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ। अच्छा, साता असाता वो आ जाओ 351 पृष्ठ पर। साता और असाता वेदनियों का जघन्य स्थिति संक्रम अंतर्मूर्त है, ये तो हमने पढ़ा था, एक पैराग्राफ होगा अभी। और सम्यक्त्व और संज्वलन लोभ का जघन्य स्थिति संक्रम एक स्थिति मात्र है। हाँ, कहाँ होगा ये, कहाँ हो जाएगा? सम्यक्त्व यानी जो क्षपणा करने वाला, जब सम्यक प्रकृति की आवली प्लस एक समय सत्ता बाकी है तब होगा ना इसका। हाँ, और संज्वलन लोभ का दसवें के अंत में आवली प्लस एक समय तभी होगा, तब उसकी सत्ता में कितने निषेक है। तो ये बात कही कि इनका ज स्थिति संक्रम एक समय अधिक आवली मात्र है, ये ज स्थिति संक्रम का अर्थ समझ में आता है ना। छह नौ कषायों का जघन्य स्थिति संक्रम संख्यात वर्ष मात्र है, क्योंकि जब ये आठवें गुणस्थान में उदय की विच्छित्ति हो जाती है, उसका जो कोई संक्रमण उस समय उसकी सत्ता में कितनी पड़ी है, तो संख्यात वर्ष है उसकी स्थिति। संज्वलन क्रोध का जघन्य स्थिति संक्रम अंतर्मूर्तकम दो मास, यानी जहाँ क्रोध बंद काल समाप्त होता है और क्रोध के परमाणु अन्य रूप हो जाते हैं, तो वहाँ दो मास उसकी स्थिति होती है, तो अंतर्मूर्तकम दो मास। और ज स्थिति संक्रम दो आउली से कम दो मास प्रमाण। संज्वलन मान का जघन्य स्थिति संक्रम अंतर्मूर्त कम एक मास, और ज स्थिति संक्रम दो आउली कम एक मास प्रमाण। संज्वलन माया का जघन्य स्थिति संक्रम अंतर्मूर्त कम आधा मास, और ज स्थिति संक्रम दो आउली कम आधा मास प्रमाण है। इसका स्वामी तो फिर पढ़ेंगे हम बाद में। पुरुष वेद का जघन्य स्थिति संक्रम अंतर्मूर्तकम आठ वर्ष, और ज स्थिति संक्रम दो आवलिकम आठ वर्ष है, क्योंकि उस समय वो जो नया बंद हो रहा है वो कितने का हो रहा है, उस समय जो सत्ता में कितना है उसकी बात है यहाँ पर। ये नौ कषायों की बात पढ़ेंगे हम 353 पे नीचे से तीसरी लाइन। छह नौ कषायों का यह एक्स्ट्रा हुआ है, जघन्य स्थिति संक्रम किसके होता है? वह उनके चरम स्थिति कांडक की चरम फाली का संक्रमण करने वाले छह नौ कषायों के क्षपक को होता है। संज्वलन क्रोध मान और माया का जघन्य स्थिति संक्रम किसके होता है? वह उनके क्षपक के होता है, क्षय करना उसको है। जो अंतिम समय प्रबद्ध के क्षेपण करने के अंतिम समय में वर्तमान है, अंतिम समय प्रबद्ध है ने वो नया बांधा है ना, उसने उसका बंधक काल जहाँ संपूर्ण होता है। संज्वलन लोभ का जघन्य स्थिति संक्रम किसके होता है, जिसके अंतिम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रायिक क्षपक होने में एक समय अधिकावली मात्र शेष है। पुरुष वेद का जघन्य स्थिति संक्रम किसके होता है, वह पुरुष वेद के क्षपक के उस समय होता है जब निक्षिप्त किया जाने वाला अपना अंतिम स्थितिबंध पूर्णतः निक्षिप्त हो जाता है। अंत में जो स्थितिबंध किया था बाद में भी वो टर्न होते रहते हैं ना, उसका संक्रमण होता रहता है, ये नवक नमक बंध जिसको कहते हैं, वो पुरुष वेद रूप जो है वो क्रोध रूप हो जाता है। सम्यक प्रकृति का जघन्य स्थिति संक्रम किसके होता है, जिसके अंतिम समयवर्ती अक्षीण दर्शन मोह होने में एक समय अधिक आवली मात्र शेष है। अभी आयु कर्मों की बात कल पढ़ेंगे हम लोग। लेट हुआ है पढ़ना है पैराग्राफ। हाँ चलो, आयु कर्मों की जिस प्रकार जघन्य स्थिति की उदीर्णा कही गई है, उसी प्रकार से उनके जघन्य संक्रमण को भी कहना चाहिए। जघन्य स्थिति की उदीर्णा जब हमने कही थी, यानी आवली प्लस एक समय रहता है तब उसकी उदीर्णा रुक जाती है। नरक गति नरक गति प्रायज्ञानो पूर्वी, तिर्यक गति तिर्यक गति प्रायज्ञानो पूर्वी। देखो गिनो कितने हैं, एकेंद्रिय द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरेंद्रिय जाति, चार चार आठ हो गए। आतप उद्योत स्थावर सूक्ष्म और साधारण 13, ये 13 का क्षय हो जाता है नौवे में। नाम कर्मों का जघन्य स्थिति संक्रम पल्योपम के असंख्यात वे भाग मात्र है, ये अनिवृत्तिकरण वाला क्षपक है। उस समय उसकी सत्ता में कितना पड़ा है तो पल्ले के असंख्यात विभाग, उसके बाद वो रुकेगा, इसलिए वहां इतनी जघन्य स्थिति संक्रम कहा। देवगति देवगति प्रायज्ञानों पूर्वी, मनुष्यगति मनुष्यगति प्रायज्ञानों पूर्वी, पांच शरीर बंधन, पांच शरीर संघात, छह संस्थान, छह सहनन, प्रशस्त व अप्रशस्त वर्ण गंध रस स्पर्श, अगुरु लघु उपघात परघात उच्छ्वास, प्रशस्त अप्रशस्त विहाय गति, त्रस बादर पर्याप्त अपर्याप्त, प्रत्येक शरीर स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, सुभग दुर्भग, सुस्वर दुस्वर, आदेय अनादेय, यश कीर्ति अयश कीर्ति, निर्माण तीर्थंकर, निज गोत्र और उच्च गोत्र, इनका जघन्य स्थिति का संक्रम अंतर्मूर्त मात्र है। सेवकेवलिकन इस प्रकार जघन्य व उत्कृष्ट अध्याच्छेद समाप्त हुआ। तो उसका किसको होता है वो पीछे लिखा है 354 पर, एक मिनट में हो जाएगा। देखो आयु कर्मों का जघन्य स्थिति संक्रम किसके होता है, जिसके अंतिम समयवर्ती तद्भवस्थ होने में एक समय अधिक आवली मात्र शेष है, क्योंकि एक आवली में वो आयु की उदीर्णा रुक जाती है किसी भी भोग के अंतिम आवली में, तो एक समय पहले उसका उदीर्णा होगी वहां पर। अब ये जो हमने 13 प्रकृति पढ़ी थी चौथे लाइन में, उनका जघन्य स्थिति संक्रम किसके होता है, इन प्रकृतियों के अंतिम स्थिति कांडक की अंतिम फालिका निक्षेप करने वाले अनिवृत्तिकरण क्षपक, नवे गुणस्थान वाला लिया नहीं। शेष नाम कर्म प्रकृतियों का जघन्य स्थिति संक्रम किसके होता है, अंतिम समयवर्ती सहयोगी के होता है, जो हमने बड़ी लिस्ट पढ़ी थी। नीच और उच्च गोत्र का जघन्य स्थिति संक्रम किसके होता है, वह अंतिम समयवर्ती सहयोगी के होता है, इस प्रकार वो स्वामित्व कहा। और यहाँ हमने उसका प्रमाणानुगम भी पढ़ लिया है। जावानी के ज्ञान विनोद भाई।